मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादा जात। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 41, इसमें लफ्ज़ है सर्रफना, या पहले पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी है, इसका रूट क्या है, स्वाद रा फा, और इसके मानी है गर्दिश करना, फेरना। इसकी फैमिली के अल्फाज जो है वो आप पहले पढ़ चुकी हैं, जैसे या मुसर्रिफुल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले। फिर आपने हवाओं के लिए पढ़ा था तसरीफ रियाह, हवाओं जो है उनका गर्दिश करना, उनका फेरना। अब यहां पर जो है सवाल ये पैदा होता है कि फेरने के लिए कुरान में और भी कुछ अल्फाज जो है वो आए हैं, तो ये स्वाद रा फा जो है इससे मुराद किस तरह का फेरना है। इसके मानी है कि स्वाद रा फा जो है इसके मानी है किसी चीज का रुख बदल देना, किसी चीज के रुख को तब्दील कर देना। जैसे जो है आप यूं कह सकती हैं कि मैंने पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि जैसे ग्लास है और उसमें पानी है, तो ग्लास पड़ा हुआ है ना, तो आप पानी पीते हैं, लेकिन आप उसको उल्टा कर दें, तो आपने उसको उलट दिया, उलट पलट कर दिया, उसका रुख बदल दिया। जैसे कुर्सी या कुर्सी पर आप बैठी हुई हैं, कुर्सी को आप उल्टा कर दें, तो इसके मानी है उलट देना, पलट देना, रुख तब्दील करना, और पूरी तब्दीली दोनों तरह भी इस्तेमाल होता है। यानी थोड़ी तब्दीली हो, थोड़ा रुख बदला जाए, जैसे गिलास को आप टेढ़ा कर रही हैं तो भी चलता है, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और पूरी तरह बदल दें, उसका रुख बदल दें, तो भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसकी फैमिली के अल्फाज में हमने तसरीफ रियाह पढ़ा, फिर इसी तरह इसकी फैमिली का एक और लफ्ज है सुमन सराफू, फिर वो फिर जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और वैसे इसकी फैमिली के मतलब इसमें और जो अल्फाज हैं इसके मुतरादिफात, इसमें अदबरा का लफ्ज भी है, दुबर है ना, ये आखिरी दर्जा है, 9 लफ्ज आए हैं कुरान में फिरने के लिए। और नकसा अला अकबे, ये भी आप पहले पढ़ चुकी हैं, और इसी तरह जो है ताफा यतूफू, ये भी आप पहले जो है वो पढ़ चुकी हैं, दारा गुलाई में घूमना, गुलाई में चक्कर खाना, तदूरू दारा तदूरू, और इसी तरह तकल्लब इनकलबा, ये भी लफ्ज है, ये हालत का रुख मोड़ने में इस्तेमाल होता है, किसी चीज के ऊपर के हिस्से को नीचे या अंदर के हिस्से को बाहर कर देना, जैसे दिल के अंदर कल्ब, वो भी चीज है ना, कल्ब और इनकलब। तो बहरहाल और भी बहुत से लफ्ज हैं, लेकिन वल्ला तवल्ला ये भी फिरने के लिए, ये तो आसान है ना, तो आप परेशान हो कि मेरी तरफ मत देखें, लेकिन बहरहाल ये लफ्ज भी आप पहले पढ़ चुके हैं। नफूरा, नून फा रा इसका रूट है, इसके मानी है, और इसके मानी होते हैं चंद के, चंद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे थोड़ी सी चीज के लिए। और इसके अलावा ये लफ्ज जो है ये लश्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है। नफरा, निकलना, सफर करना, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये लफ्ज नफरत के लिए भी आता है, नफूरा नफूरा, नफरत के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो असल में अब आप देखें कि लश्कर के लिए, जमात के लिए जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो कुरान में आए हैं, और खास तौर पर नफूरा का लफ्ज जो है इससे क्या मुराद है। यह बाज लफ्ज ऐसे हैं कि आपस में बहुत ही मिलते जुलते से लगते हैं, बहुत ही मामूली सा फर्क होता है ना, तो जरूरी है कि थोड़ा सा इसको आप देख लें, ताकि अभी आपके जहन में जो सवाल पैदा हो रहे थे तो उस लिहाज से फिर सहूलत हो जाए। जैसे नफरा का मतलब है किसी जंग पर रवाना होना, नफर जंगजुओं का दस्ता, 3 से 10 तक की जमात को कहते हैं, और नफीर कहते हैं लड़ाई की तरफ कूच करने वाले लोग। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि नफीरुल आम हो गई है, अब आम नफीर हो गई है, उसका मतलब है कि जैसे इस्लामी हुकूमत की तरफ से जंग के लिए जो है वो ऐलान हो गया है कि लोगों को जो है वो उठना चाहिए, निकलना चाहिए। तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो मुहिम या जंग पर जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अच्छा, नफीर जो है ये भी वही है, इसका मतलब कि जंग या मुहिम पर रवाना होना, लड़ाई की तरफ कूच करने वाले लोग, और नफीर जो है ये 10 से कम आदमियों का ग्रोह है। तो दूसरा लफ्ज जो है वो नफूरा, नफरत और बिदकना। तो जैसे दुश्मन के लिए जा रहे हैं ना जंग करने के लिए, तो जो जंग करने वाले हैं फिर उनके अंदर क्या पाया जाता है, नफरत पाई जाती है ना, तो इस तरह ये लफ्ज जो है निकलना, नफरत करना, उसके लिए भी नफूरा का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है कि इल्ला नफूरा, मानी क्या है कि उनका बिदकना, उनका नफरत करना, बिदकना और नफरत करना। आलेहा तुम जो है इसका वाहिद क्या है, इला, शाबाश, और रूट क्या है, हमजा लाम। हाँ, लब तगौ, इसका मादा क्या है, बागैन या बागैन, वो, और मानी है चाहना, अच्छी चीज चाहने के लिए भी आता है और बुरी चीज चाहने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अर्श, अर्श जो है ये किसे कहते हैं, बुलंदी के लिए आता है, और छत के लिए भी इस्तेमाल होता है, छत के लिए सकफ भी आता है, सीन काफा, लेकिन ये अर्श भी इस्तेमाल होता है। उलूवन रूट है, ऐन लम्बो, और इसी से आला, ताला, आलिया, तुसब्बेहू, सीन बाहा, किसी चीज का हवा या पानी में तैरना और तेजी से गुजर जाना। फिर इसके बाद ये लफ्ज जो है किसी काम को सुर्रत के साथ अंजाम देने पर भी इस्तेमाल होने लगा, किसी काम को तेजी से करने के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। सबू जो है ये गिनती है, 7 को कहते हैं। तफकहूना फे काफ हा, सूझबूझ, समझ बूझ, इसी से फिका है, इसी से फकीह, फुकहा, अल्लाहुम्मा फक्केह ना फिद दीन, है ना, ये दुआ भी आपने याद की है। फिर इसके बाद है हलीमन, हा लाम मीम, हा लाम मीम, इसके मानी है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। और फिर आप देखें तो हिल्म के मुख्तलिफ दर्जे हैं, जैसे बर्दाश्त करना पहला है हिल्म, दूसरा है सबर, और तीसरा है कजम। तो हिल्म के मानी क्या है, गम और गुस्से के मौके पर तबीयत का एतदाल में रहना, कोई जो सजा का मुस्तहिक हो उसको सजा देने में ताखीर करना और मोहलत देना। और अल्लाह ताला जो है वो हलीम है, ये अल्लाह की सिफत है। फिर इसी तरह सबर दूसरा इसका दर्जा है कि किसी को तंगी की हालत में रोक लेना। और सबर क्या है? अस्सब्र इंद सदमतिल उला। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें सबर की तारीफ पता चलती है। तीसरा दर्जा है इसका कज़्म, कैफ ज़ोए मीम। कैफ ज़ोए मीम सांस की नाली को कहते हैं, और मुश को पानी से लबालब भरकर इसका मुंह बंद कर देना। कज़ीम या मकज़ूम वो शख्स होता है जो गम और गुस्से से सांस की नाली तक भरा हुआ हो मगर उसका इजहार ना करे और उसे दबा जाए। तो यहां पर ये जो सिफत है हलीमन की, ये पसंदीदा सिफत है और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इस्तेमाल हुई है कि दुनिया में लोग गुनाह करते हैं, सजा के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन अल्लाह उनको सजा में ताखीर करता है और उनको मोहलत देता है, उनको दुनिया में जीने देता है। आयत नंबर 45 और 46 में अगर आप देखें, तीन लफ्ज बहुत अहम है। एक आयत नंबर 45 में है हिजाबन, दूसरा है मस्तूरा, और 46 में है 46 में अकिनतन। और ये लफ्ज जो है ये पर्दे के लिए इस्तेमाल हुए हैं तीनों लफ्ज ही, और इत्तफाक से बहुत करीब करीब हैं। पर्दे के लिए कुरान में 9 लफ्ज आए हैं, जिनमें से पहला गिता है। ये सूरत काफ में आप पढ़ेंगी, फकशफना अनका गिताअक, कि तेरा पर्दा तुझसे हमने हटा दिया। दूसरा है गिशावा, ये आप सूरत अलबकरा में पढ़ चुकी हैं। और तीसरा है गुल्फ, ये भी आप सूरत अलबकरा में पढ़ चुकी हैं। क़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, के जैसे तकिया होता है ना उसके ऊपर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है उसको गुल्फ कहते हैं। चौथा है अकमाम, ये सूरत अर्रहमान में आपको आता ही होगा कि फीहा फाकिहतुन व नखलु ज़ातुल अकमाम, है ना, ये चौथा है। पांचवा अकिनतन है, पांचवा दर्जा पर्दे का अकिनतन है, जो आयत नंबर 46 में आपको नजर आ रहा है। इसका रूट है काफ नून नून। इसके मानी है किसी चीज को महफूज मकाम में छुपाना, धूप से बचाना, जैसे धूप से बचने के लिए भी आप कहीं साइड पर हो जाते हैं ना, जैसे आप महफूज हो गए। इसी तरह किसी का राज है, आपने उसको उसकी बात को दिल में छुपा लिया, तो दिल क्या है? अकिनतन है, कि आपने उसको वहां पे जो है छुपा लिया है। तो अकिनतन वाहिद है, जमा अकनान है, जाहिरी माननी दोनों तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अकिनतन, तो ये है पांचवा दर्जा। और छठा है सितरा, सतर होता है ना, सुतरा भी इसी से। सुतरा क्या होता है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं जो चीज आगे खड़ी करते हैं, तो वो आपके दरमियान और जो लोग नमाजी के आगे से गुजर रहे होते हैं, वो जो रोक या रकावट होती है वो सुतरे का काम देती है, रोक का काम देती है। तो सुतरा, तो सीन ता रा के मानी होते हैं छुपाना, नजरों से कोई चीज जो है वो ओझल नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो चीज है उसके लिए एक रोक आगे। जैसे एक सतर होता है एक हिजाब होता है, तो दोनों में फर्क है ना, कि सतर का ताल्लुक जो है किसी दूसरी चीज से नहीं होता, लेकिन हिजाब का ताल्लुक दूसरी चीजों से भी होता है। जैसे आप जब आप हिजाब ले लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर एक पर्दा हो जाता है ना। तो बहरहाल सतर जो है वो करना, और इसके मानी है सतर के छुपाना। और मस्तूरा यहाँ पे है सातिर, आप कहती हैं मेरा लिबास सातिर है, सतर है, सातिर है, सुतरा है, सितरा है, ये मुख्तलिफ इसकी फैमिली के अल्फाज हैं। और इसके बाद सातवां दर्जा जो है पर्दे में हिजाब का है। हिजाब क्या होता है? ऐसा पर्दा जिससे एक चीज का दूसरी को देखना या उस तक पहुंचना ममनू हो। आप हिजाब जब ले लेती हैं तो आप अंदर से छुप जाती हैं ना। और आठवां है औरत, शगाफ, और जो सतर के मकाम है ना, सतर की जगह है, जैसे प्राइवेट पार्ट है, शर्मगाह है, तो जो भी सतर की जगह है उनका पर्दा करना औरत कहलाता है। तो औरत हमें औरत को औरत इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी की औरत, पूरी की पूरी औरत जो है वो उसको छुपाना चाहिए। नामा है सुरादिक, सुरादिक, और इसके मानी है बगैर छत के मोटे कपड़े की कनाते खड़े कर देना, सुरादिक। सीन रा अलिफ दाल काफ, सुरादिक। सीन रा अलिफ दाल काफ, सुरादिक। आपने देखा होगा ये शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं उसमें कनाते वगैरह लगाई भी होती हैं, तो जब वो कनाते लग जाती हैं तो क्या होता है कि जो है वो इर्द गिर्द से जो है वो पर्दा हो जाता है, यानी साइडों से पर्दा होता है, और जरूरी नहीं है कि उसमें जो है वो ऊपर से भी पर्दा हो, है ना। कनाते साइडों पर मोटे कपड़े की जो है वो लगाई जाती हैं। और यहाँ पे आप सूरत काफ, आपकी अगली सूरत जो शुरू हो रही है उसमें इंशाल्लाह आप ये लफ्ज पढ़ेंगी, और उसमें जो जहन्नमी हैं उनके अजाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये लफ्ज जो है इस्तेमाल किया है, सुरादिक। और ये आयत नंबर 29 में है, अहाता बिहिम सुरादिकुहा, और इसकी जमा है सुरादिकातुन। तो इस तरह पर्दे के लिए 9 लफ्ज आए हैं और 3 लफ्ज यहां पर आए हैं, तो मैंने जरूरी समझा कि आपको 9 के 9 बता दिए जाएं ताकि आपको अंदाजा हो कि कितने आप पहले पढ़ चुके हैं, इनका आपस में दर्जा क्या है। तो जो जो 3 लफ्ज आए हैं इसमें से जो अकिन्नतन है इसका 5वां दर्जा है, फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज है मस्तूरा, इसका 6ठा दर्जा है, इसके बाद अकिन्नतन है, अकिन्नतन का आप पढ़ ही चुके इसका 5वां दर्जा है, मस्तूरन का 6ठा, और फिर है हिजाब, हिजाब का 7वां है। तो 5वां 6ठा और 7वां अयफ का हु, दोबारा वही लफ्ज जो है वो आ गया, फा क्वाफ हा, इसके मानी है समझना दरियाफ्त करना, फिका इसी से है फुकहा, वफी आजानहिम, हमजा जाल नून, और इसके मानी होते हैं कान के उजुन। अब आप देखें कि आपके जो अपने जिस्म के आजा हैं इनमें से बहुत से मानी अब आपको आते हैं, बहुत से अल्फाज आपको आते हैं ना अरबी जबान में। आपने जो है वो आंख के बारे में पढ़ा, आंख ऐन है, बाल के बारे में पढ़ा, शार है, चेहरा वजहुन है, दांत जो है वो असिन्नु बिसिन्नी, है ना, दांत के बारे में आपने पढ़ा। अच्छा, अब यहां पर जो है खास बात ये है कि कान जो है एक इसके अंदर समात होती है सुनना, और दूसरा कान के अंदर एक वकर होता है, यहां पे लफ्ज लिखा हुआ वकरन, वो काफरा, ये बोझ को कहते हैं। बोझ के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं, आप पढ़ चुकी हैं सकल या सिकल, साकुलत, मवाजीनहु, आप पढ़ चुकी हैं ना, तो वजनी और बोझल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा है हमल, बोझ उठाना, बोझ लादना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ तीसरा लफ्ज है वकर का, ये बोझ के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन मानवी तौर पर, ऐसा बोझ जो के जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा, जैसे फी सदर ही वकरुन, उसके सीने में बोझ है, किस चीज का, कीने का, कीना कुदूरत का, उसके दिल के अंदर बोझ है, आपको तो नजर नहीं आ रहा लेकिन उसका रवैया जो है ना वो बता रहा है कि समथिंग इज देयर, कोई रॉन्ग है जो चीज उसके अंदर है। इसी तरह फी ओजोन ही वकरुन, कि उसके कान में बोझ है, मतलब क्या है कि उसके कान के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से वो ऊंचा सुनता है, या वो बहरा है, या ये भी हो सकता है कि कान के अंदर मैल है, है ना, तो कानों का मैल भी हो सकता है। बाज़ लोग वकर का तर्जुमा कानों का मैल भी करते हैं, लेकिन आपको तो नजर नहीं आ रहा ना, कुछ भी हो सकता है, कानों के मैल की वजह से भी इंसान फिर ऊंचा सुनने लगता है, उसको सुनाई नहीं देता। और घरों में तो ये मसला रहता है कि कभी आप सुनना नहीं चाहते, कभी बच्चे सुनना नहीं चाहते, तो आप कहते हैं कि कान चेक कराने की जरूरत है। तो असल क्या है कि कानों के अंदर वक्र है, बोझ है। अदबारहिम दाल बारा पीठ के लिए इस्तेमाल होता है, नुफूरा वही नून फारा निकलना, बिदकना नफरत से मुंह मोड़ना, यस्तमे ऊना सीन मीम ऐन का मतलब तो सुनना है ना, लेकिन अल्फाज की ज्याति मानी की ज्याति पर दलालत करती है। तो बात को तवज्जो से सुनना, सुनगुन लेना, कान लगाकर सुनना। तो क्योंकि ये मुशरिकीन की बात हो रही है, तो वो कान लगाकर मुसलमानों की महफिल में बैठते ताकि कान लगाकर बातें सुने और बाद में वो बैठकर मजाक उड़ाए। आयत नंबर जो है वो 49, 49, और इसमें लफ्ज है इजामन, आयन जोए मीम, ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, ये हड्डी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फिर उधार के मानी लेकर ये बड़ी चीज के लिए भी इस्तेमाल होने लगा, बड़ी के लिए आता है। फिर दूसरा अहम लफ्ज है जो पहले भी आप पढ़ चुकी हैं, ये है रुफातन, रुफातन, और रा फा ता इसका रूट है, और ये कहते हैं चूरा चूरा रेजा रेजा को। कुरान में इसके लिए 7 लफ्ज आए हैं, और इसमें से रुफात जो है या रफाता इसका 5वां दर्जा है। तोड़ना कूटना, कूटी हुई चीज, बोसीदा चीज, क्योंकि जो पुरानी चीज हो जाती है ना वो भी चूरा चूरा आसानी से हो जाती है। और इसके मानी है कि किसी चीज का पुराना होने की वजह से चूरा चूरा हो जाना। तो हड्डियां जो हैं जब पुरानी हो जाती है ना, तो फिर वो क्या हो जाती हैं कि अपना पुराना होने की वजह से वो रुफात बन जाती हैं, चूरा चूरा मिट्टी हो जाती है, खाक हो जाती हैं। इसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। हिजारतन हाज इमरा, ये पत्थर को कहते हैं, हा दाल दाल ये हदीद है ना, सूरत हदीद भी आप आगे पढ़ेंगी, और वैसे हा दाल दाल ये लोहे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद आप देखिए आयत नंबर 51 है, इसमें जो है वो खास लफ्ज है फसा युनगिदूना, इसका रूट है नून गैन द्वाद, और इसके मानी है सर हिलाना, और सर हिलाने के लिए कुरान में कई लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, और इन इनमें से नगदा, जैसे हिलने के लिए या हिलाने के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं। हर्रका, ये आम लफ्ज है हरकत, कुछ भी हिल सकता है, जिस्म का हिस्सा हिल रहा है, पत्ता हिल रहा है, कोई भी चीज हिल रही है, तो आम हिलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। हज्जा जो है ये दरख्त को हिलाना कि उसका फल गिर पड़े, बहुजी इले की बेजिज इन नखला, हजरत मरियम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए उन्हें ये पैगाम दिया कि दरख्त खजूर के को आप हिलाइए तो पकी हुई खजूरें नीचे गिर पड़ेंगी, तो हज्जा। हाँ दो चश्मी जो है वो, और फिर जे, इसी तरह सांप के लाठी जब हरकत कर रही थी ना, जैसे सांप हो, वहां पे भी ये लफ्ज आया है तहतजू, किसी चीज का इस तरह हिलना या हरकत करना जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो या झटक रहा हो कोई, टहनी को झटकते हैं तो फल गिरता है, अब वो लाठी इस तरह से सांप बनकर हरकत कर रही थी जैसे कोई उसको झटक रहा है, तो आपस में दोनों बातें रिजेम्बलेंस है। तीसरा है हशा, हशा और हज्जा, ये दोनों जो है ये हम मानी लफ्ज हैं, लेकिन फर्क यह है कि हशा जो है नरम और हल्की चीज को हिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, पत्ते झाड़ना नरम चीज है ना, उर्दू में आप बड़े बड़ा इसका इस्तेमाल करती हैं, हशा का लफ्ज याद है आपको इस्तेमाल करती हैं, आप कहेंगी नहीं नहीं तौबा मेरी तौबा, कब हमने इस्तेमाल किया? हम कहते नहीं हशाश वशाश, कितना मुश्किल लफ्ज है, कैसे आप इस्तेमाल करती? हशाश ऐसा आदमी जिसका चेहरा मामूली बात पर खिल जाए, खुश हो जाए वो। कितनी खूबसूरत बात है ना। कुछ लोग जो होते हैं उनको हंसाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर वक्त रूठे रहते हैं, उदास रहते हैं, परेशान हाल होते हैं, महफिल के अंदर भी हैं, पता नहीं कहाँ गुम है, कहाँ डूबे हुए हैं। उनको जो है ना लाने के लिए बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ लोग होते हैं बड़े राजी रहते हैं अल्लाह के फैसलों पे और हंसते मुस्कुराते हुए। हशाश बशाश मशहूर लफ्ज है कुरान में। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका इस्तेमाल किया है कि उन्होंने कहा था कि अहुशु बिहा, कि मैं ये जो लाठी है ना इससे पत्ते भी झाड़ता हूं, तो वहां पे ये लफ्ज आया था। अच्छा, बहरहाल चौथा लफ्ज है लवा, रस्सी बटना, सांप का कुंडली मारना। और पीछे आप पढ़ चुकी हैं जब वो अपनी जबानों को जो थे वो मोड़ते थे ताकि वो और बदल जाए, लवा लिसाना हो, है ना। और अब हम आखिरी लफ्ज पर आए और वो है हमारा ये आयत नंबर 51, सूरत बनी इसराइल में इस्तेमाल हुआ, फसा युनगिदूना। इसका रूट है नून गैन द्वाद, कांपना हिलना बेकरार होना, सर को ताज्जुब या मस्खरेपन की वजह से या कपकपी की वजह से मटकाना, झटका देना। होता है ना कि आपके साथ कोई जब बात कर रहा है या आप किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि कभी तो हैरत होती है तो ताज्जुब से सर जो है ना उसको हिलाना शुरू कर देते हैं, सर बेकरार होकर हिलता है। कभी होता है कि मजाक के तौर पर सर जो है वो हिलाया जाता है, मसखरापन। और कभी होता है कि बेचैनी की वजह से सर जो है वो बेकरार होकर जो है वो हिलता है। तो ये लफ्ज सर को हिलाने के लिए मशहूर है, मारूफ है, खास है, नगादा आम हिला नहीं। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 53 है और इसमें लफ्ज है यनजगू, नून जे गैन, नून जे गैन, और इसके मानी है फसाद डालना। फसाद डालना, ये लफ्ज आपने पहले पढ़ा था। आपने पहले पढ़ा था क्योंकि आपने फसाद की कई किस्में पढ़ी कि बाज फसाद है नजर आते हैं, बाज फसाद है जो नजर भी नहीं आते, है ना। तो मुख्तलिफ तरह के फसाद के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो लेकिन एक दफा इसको दोहरा लेते हैं ताकि फिर से आपको जो है पक्का हो जाए, और आपको वैसे इस तरह मजा भी बहुत आता है ना। फसाद के लिए एक तो फा सीन दाल है, ये आम लफ्ज है, और दूसरा लफ्ज है अफा, ऐन सा अलिफ या ऐन अलिफ सा, और वला ताज़ो फिल अर्दे मुफ़सिदीन, सूरत अल बकरा आयत 60 में आपने इसको पढ़ा था। ज़हनी और फिक्री बिगाड़ के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, जुल्म और ज्यादती के लिए भी इस्तेमाल होता है। वला ताज़ो फिल अर्दे मुफ़सिदीन, जैसे किसी को कत्ल करना उसके लिए भी आता है, और किसी के जहन के अंदर बिगाड़ पैदा करना उसके लिए भी आता है। और फसाद के लिए जो आखिरी दर्जा है वो है नजागा। नजागा के मानी होते हैं दो चीजों के दरमियान फसाद पैदा करना, झगड़ा भरपा करना, फसाद पर आमादा करना। जैसे मियां बीवी के दरमियान अगर कोई लड़ाई करवा दे, बिगाड़ पैदा कर दे, झड़प करवा दे, दुश्मनी डाल दे, तो भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। दो दोस्तों के दरमियान भी, तो किसी काम को बिगाड़ना, उसमें दखल अंदाजी करना, मुदाखलत करके उसमें फसाद पैदा करवा देना। और ये फसाद एक चीज में भी हो सकता है, दो चीजों में भी हो सकता है, दो से ज्यादा में भी हो सकता है। असल मानी है मुदाखलत करना। इन शैताना यनजहू बैनहुम, ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद पैदा करने की कोशिश करता है। मैं सोच रही थी ये पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ है, सूरत यूसुफ में आपने पढ़ा था, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، تو شیطان نے مداخلت کر کے ہمارے درمیان جو ہے وہ فساد پیدا کروا دیا تھا. آیت نمبر 54 سورۃ بنی اسرائیل یہ آپ کو آتی ہے. آیت نمبر 55 اس میں بھی کوئی نیا اور مشکل لفظ جو ہے وہ نہیں ہے. اور 56 جو ہے اس میں ادعو جو ہے یہ بھی آپ کو آتا ہے. دالین واو، شاباش، دعا کرنا، مانگنا. اور زعمتم جو ہے زے عین میم، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں. گمان کرنا، خیال کرنا. قرآن میں تین لفظ آئے ہیں، پہلا ہے زن، اور زن کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ہر طرح کے خیال، گمان، وہم، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. کبھی وہم ہوتا ہے کسی چیز کا، کبھی گمان ہوتا ہے، کبھی غالب یقین ہوتا ہے. بہرحال زن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسرا درجہ ہے زوم کا، زے عین میم، یہ باطل گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلط گمان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسی بات جو نہ تو یقینی ہو اور نہ ہی درست ہو. قرآن میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں گمان کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور آیت نمبر 56 ہے، اور اسی میں آپ دیکھیں تو کشف کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. کشف، کاف شین فا اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہے کھولنا. اب آپ دیکھیں کہ کھولنے کے لیے قرآن میں 7 لفظ آئے ہیں اور کشفا کا 5واں درجہ ہے. کھولنا، بے نقاب کرنا، پرے ہٹا دینا، ایک چیز سے دوسری چیز کو ہٹا دینا جس سے پہلی چیز نمایاں اور ظاہر ہو جائے. انکشاف بڑا مشہور ہے. آپ کیا کرتی ہیں، آپ کسی چیز کا انکشاف کر دیتی ہیں، تو جب انکشاف کیا تو جو چیز پردے میں تھی وہ کھل کر باہر آ گئی. ہاں، تو پردہ فاش ہو گیا. تو بہرحال یہ آپ قرآن میں آگے پڑھیں گی، وکشفت ان ساقیہا، وکشفت ان ساقیہا، اور کپڑا ہٹا کر اس نے اپنی پنڈلیاں جو تھیں وہ کھول دی. پیچھے بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے، ہاں، سورۃ نحل میں بھی یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے. اچھا، دوسرا عام لفظ ہے یہاں پر آیت نمبر 56 میں تحویلا، ہا و لام، اور یہ کیا ہے، یہ ہال جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ماحول. ہال کیا ہے کہ ارد گرد، اور ماحول کیا ہے کہ یعنی ماں، یعنی اس کے جو چیز جو ہے وہ ارد گرد ہے. تو ہال کے معنی کیا ہے، چکر میں حرکت کرنا، کسی چیز کے ارد گرد کو اس کا ہال کہتے ہیں. اور حوالہ، کسی چیز کو اصلی جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا. چیز اصل مقام سے ہٹ جاتی ہے لیکن چھپتی نہیں ہے. بدل دینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تحویل پھر ہوتا ہے، جب بدلنے کے لیے ہوتا ہے تو تحویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ قرآن میں بار بار پڑھیں گی کہ مجرم قوموں کا جو انجام ہے کہ پھر اللہ کیا کرتا ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ سزا دیتا ہے. تحویلا، تو بدلنے کے لیے قرآن میں بدلا ہے پہلا درجہ، دوسرا ہے حملہ، تیسرا ہے غیرہ، چوتھا ہے حرفہ، پانچواں ہے نکرہ، اور چھٹا ہے داولا. اسے دولا بھی ہے، داولا بھی ہے، خوشحالی کے دن ادل بدل کرنا. بہرحال تو یہاں پہ تحویلا جو ہے، پھر اس کے اصل معنی کیا ہوئے کہ کسی چیز کو اسے اس کے اصل مقام کی بجائے دوسری جگہ کر دینا. तो किसी चीज के इर्द गिर्द को इसका हॉल कहते हैं। हाँ, किसी चीज को अपनी तहवील में ले लेना, तो अब क्या है कि उसको आपने बदल दिया ना, उसकी जगह से चीज ले ली आपने, आपके पास आ गई, लेकिन असल चीज गायब तो नहीं हुई ना, तो बदल दिया आपने, तहवील में ले लिया, बदल दिया। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तहवील में लेना। आयत नंबर 57 है और इसमें महजूरा का लफ्ज है, इसका रूट है हा जाल रा, और ये लफ्ज जो है ये डरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डरना। अच्छा, अब आप देखें तो आपने डरने के लिए भी कुरान में 12 लफ्ज जो है वो पढ़े हैं, जिसमें से ज्यादातर आप पढ़ चुके हैं, खाफ, खौफ, खशियत, खुशु, मुत्तकी, इत्तका, रआ और हजिर। हजिर का छठा दर्जा है किसी खतरे की चीज से बचना, डरना, चुकन्ना होना, खौफजदा करने वाली चीज से दूर रहना। अच्छा, जो जिस चीज से आप खौफजदा हो रहे हैं वो खतरा यकीनी भी हो सकता है और गुमान भी आपको हो सकता है, लेकिन एहतियातन आप उससे बचने के लिए जो है वो उस खतरे से बचने के लिए आप डरना शुरू कर देते हैं। और खास तौर पर जैसे बिजली का नंगा तार, आप ये मिसाल याद रख सकती हैं, हजारा, और पीछे आपने पढ़ा था या जलूना असाबे हम फी आजाने मिन सवाइकी हजर अल मौत, सूरत अल बकरा आयत 19 में आप ये लफ्ज पढ़ चुकी हैं। और यहाँ पे महदूरा है कि अल्लाह का अजाब जो है ना वो डरने के लायक चीज है। आयत नंबर 58 में मस्तूरा है, ये आपको आता ही है, सीन तो रा लिखी हुई चीज को कहते हैं, सतरे, इस तरह भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मुबसिरतन है आयत नंबर 59 में, ये लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। और यहां पर जो है इसके मानी क्या है कि जैसे कोई चीज जो बिल्कुल अलल ऐलान है, रोशन है, नजर आ रही है, ऐसी निशानी। तखवीफा ये खौफ से है। अब आपसे पूछा जा सकता है ना कि एक फैमिली के लफ्ज यहाँ पे कौन कौन से हैं, पीछे आपने महजूरा पढ़ा तो यहाँ पे तखवीफा आ गया। और ये आयत नंबर 57 में ये खाफूना भी है, खौफ भी है, तो खौफ भी आ गया, हजर भी आ गया और तखवीफा दोबारा खौफ आ गया, है ना। अच्छा, हम आ जाते हैं आयत नंबर 60 में। आयत नंबर 60 जो है इसमें रोया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसका रूट क्या है, रा हमजा या, देखने के लिए भी आता है और जो ख्वाब इंसान देखता है रोया उसके लिए भी ये लफ्ज है वो इस्तेमाल होता है। और शजर, शीन, जीम, रा, ये लफ्ज जो है ये दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है, दरख्त के लिए। और वैसे तो दरख्त से मुराद क्या है कि ऐसे दरख्त जिसकी जिसका तना है और जिसकी शाखें वगैरह हैं, लेकिन कभी कभी ये लफ्ज जो है ये हर उस नबातात के लिए होता है इस्तेमाल, बल्कि ये लफ्ज हर उस नबातात के लिए इस्तेमाल होता है जिसका तना हो, खा वो बुलंद चला जाए या जमीन पर फैल जाए। तो शजर का लफ्ज आम है, हर तरह के नबातात पर इसका इतलाक होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। शजर का लफ्ज झगड़े के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे जो है वो दरख्त की टहनियां होती है ना जो एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था होती हैं, एक दूसरे के अंदर उलझी हुई होती है, जैसे वो झगड़ा कर रही हैं, हवा चलती है वो हिलती हैं तो एक दूसरे को लगती है ना, तो झगड़े में भी तो यही होता है ना कि आप अपने जुमले दूसरे पर मारते हैं, आप बार बार एक बात को करते हैं। यहां पे मलऊना का लफ्ज है इसके बाद, लाम ऐन नून, इसका मतलब है किसी को लानत करना या फिर किसी को रहमत से महरूम करना। और आयत नंबर 60 जो है इसका आखिरी लफ्ज कबीरन है, काफ बारवा ये आप सबको आता ही है।